وأثبتها فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى روحه ونفسه وسهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: من أخلص لله 40 صباحا يفتح الله أبواب الحكمة من قلبه إلى لسانه. صلوات على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. إيس لندن کے ان تینوں مراکز نے محرم بھی آن لائن برپا کیا اور مجالس کرتے رہے، امام الگاہوں کے اندر ہم نے ریکارڈنگز وغیرہ کی، ایسٹ لندن امامی مشن ایسٹ لندن، سکینہ ٹرسٹ اور ایم سی مسلم سینٹر آف ایسکس، ان سب نے اپنی مجالس کو برپا کیا اور مومنین بھی آن لائن سنتے رہے، احتیاطی تدابیر پہ بھی عمل کیا. بہت سے مومنین، مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت سخت بیمار ہیں، ان کے لیے ہم سب لوگ دعا گو ہیں، اور کوئی بھی جو ہے کسی بھی بیماری سے لڑنے کے لیے ہمت اور حوصلہ بہت ضروری ہے. جب انسان ہار مان لیتا ہے تو پھر وہ اس بیماری سے نہیں لڑ سکتا. تو کسی بیماری کے مقابلے کے لیے ہمیشہ پازیٹو رہیں، یعنی مثبت انداز سے سوچیں کہ نہیں، انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اور جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹر نے بتائی ہیں ان پہ عمل کریں. بعض اوقات کہتے ہیں بھی میڈیسن نہیں آئی، کوئی ویکسینیشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو جس قدر ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنے طور پہ عمل کیجئے، اور جو ڈاکٹروں نے جو چیزیں بتا دی ہیں ان پہ عمل کیجئے. جیسے بہرحال کچھ اکثر جگہوں پہ سٹیم لینا کافی مفید ثابت ہوا ہے، مسلسل گرم پانی جب اس میں سے بھاپ نکلتی ہے تو سر پہ تولیہ وغیرہ یا کچھ رکھ کے. تو بہرحال تمام ہم آپ کے لیے، تمام آپ مومنین کے لیے، چاہے وہ ایسٹ لندن کے ہو کہیں کے ہوں، سب کے لیے دعا گو ہیں. اور اس کے علاوہ نماز ہے جمعہ کو بھی تعطیل کیا، کیونکہ نماز جمعہ کے اندر بھی وہ شرائط 2 میٹر والی، کیونکہ ہمارے مہاراجوں نے 1.2 میٹر کا کہا ہے کہ احادیث کی روشنی میں، کہ احادیث میں جو فاصلہ بتایا گیا اس کو اگر آج کنورٹ کرتے ہیں تو وہ 1.2 میٹر بنتا ہے کہ فاصلہ اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. فاصلہ ہو دو افراد میں 1.2 میٹر کا تو جماعت ہو جاتی ہے. تو یہ 2 میٹر کی وجہ سے نہیں ہو پاتی تھی. پھر اس میں بہرحال اور بہت سے دوسرے مسائل ہمارے برادران نے ذکر کیے کہ بھئی یہ جیسے بھی الحمدللہ جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں، جیسے ہی حکومت کی طرف سے کنڈیشنز کم ہو جاتی ہیں، حکومت کی تدابیر پہ عمل کرنا بھی لازم و واجب قرار دیا ہمارے مراجعوں نے، تو اس پہ بھی بہرحال لوگ عمل کر رہے ہیں. اور جیسے ہی یہ تسہیل ہوتی ہے، جیسے ہی تھوڑی بہت سہولت ہوتی ہے اور حکومت کی طرف سے کنڈیشنز جو ہیں نرم کی جائیں گی اور حالات بہتر ہوں گے، تو انشاءاللہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو آ گئی ہے، دوسری لہر آئی ہے. سیکنڈ ویو جو ہے کہہ رہے ہیں برطانیہ میں آ چکی ہے اور یورپ کے بہت سے ممالک میں. تو اب ہم انشاءاللہ جیسے ہم نے پہلی ویو کو گزارا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم گزار لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور جو خصوصاً ہمارے مؤمنین مریض ہیں، خصوصاً بہت سے بزرگ جو بالکل مجالس میں نہیں جا سکے ہیں، اور محرم ہماری جو ہے وہ شہر کی حیات ہے، بہت سے لوگ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور تڑپ رہے ہیں مجالس میں اور جانے کے لیے، بزرگوں کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے. میں خود मेरे बुजुर्ग वालिद हैं तो वो नहीं जा पाते, तो बात का वो टेलीविजन पे मजालिस देखते रहते हैं और फिर रोते हैं बहुत ज़्यादा कि मजलिस में हम नहीं जा पा रहे, मुहर्रम में हम वहाँ, तो आसान नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तमाम हजरात की कैफियत को, लेकिन हिम्मत हौसला रखें, इसमें भी मसलहत है। सबसे बड़ा जो इस फायदा हुआ कि बहुत से मोमिनीन कह रहे हैं कि मौलाना हम लोग बस एक मजलिस घर में करवा लेते थे तो हम कहते थे एक मजलिस हो गई हमारे घर में, हम ये यानी एक अफोर्ड कर सकना। बहुत से लोग कहते थे कि हमारे घर में आज तक हम घर में मजलिस नहीं करते थे, ये मेहमानगा चले जाते थे। तो कहा कि आज हम हर घर में मजलिस हुई है, उसके भी लोगों ने घर घर मजलिस हुई है जहाँ जहाँ मोमिनीन है। तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह कि एक इसमें भी अल्लाह ने मोमिनीन को ये तौफीक इनायत फरमाई है कि मजालिस हुई, मजालिस बर्पा की गई और घर घर मजलिस हुई है। तो अरबईन आ गया है, अब अरबईन हुसैनी भी आ गया, मुहर्रम गुजर गया, सफ़र भी अपने आखिरी मराहिल में है, अब तो चेहलुम आ चुका है। तो चेहलुम की मजलिस के लिए बहुत सी जगहों पे लोग एहतमाम भी कर रहे हैं, कोई जगहों पे 10 लोगों की इजाज़त है, 20-30 लोगों की इजाज़त, हर जगह पे हर इमाम बारगाह की कैफियत अलग अलग है, उनके साइज़ का, उनके आने जाने का इंतज़ाम, फिर तो हर जगह के मसाइल मुख्तलिफ। मैं खुद इस कोरोना वायरस से गुजरा हूँ और मेरी फैमिली सारी गुजरी है, तो हमें खुद अंदाज़ा है। मैं दूसरों की सुनी हुई बात नहीं बता रहा, तो हमने खुद इस इन मराहल से हम गुजरे हैं, हमने इससे गुजर के देखा है। आसान नहीं था, मेरी अपनी कैफियत जैसी थी, लेकिन हम जल्दी परवरदिगार का करम हुआ, मोमिनीन की दुआओं का असर, उलमा ने मोमिनीन ने दुआएं पूरी दुनिया में हमारे लिए इतनी की, तो हम बहुत जल्दी रिकवर कर गए। ये दुआओं का असर था कि वह हफ्ते में ही, एक हफ्ता हमारी जो है वो बुखार और सब चीज़ रहे, दूसरे हफ्ते से हमारा बुखार वगैरह उतरा और तीसरे हफ्ते से हम लोग नॉर्मल उसमें आ गए और हमारे जो है वो सेहत ठीक हो गई। तो अब 4-5 हफ्ते जो भी गुजर चुका, तो ये परवरदिगार का करम हुआ, जनाब सैयदना सलाम अलैहि का खास करम रहा हम पे कि मोमिनीन की दुआएं और ये जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मैं अब क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है और ये मराहिल जो हैं वो गुजर रहे हैं, मुझसे दरख्वास्त की थी कि कुछ थोड़ा टाइम दीजिएगा, हमारे बहुत से मोमिनीन मोमिनात बहुत सख्त परेशान हैं, तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा बोल दिया। इसलिए मैं दोबारा कहूँगा कि पॉजिटिव रहें और ज़्यादा परेशान नहीं हो आप लोग। अरबईन हुसैनी, मैंने जिस हदीस का इंतखाब किया कि अरबईन की बड़ी एक अहमियत रही है और इस्लाम में जो है वो 40 40 दिन, 40 हफ्ते, 40 माह, 40 साल, इसका एक खास असर है। और अरबईन को कुरान में भी कहा गया, मीकात जनाब मूसा 40 दिन की थी, कि अल्लाह कहता है कि हमने सलासीना या हमने 30 दिन के लिए बुलाया, वह अतमम नाहब अशरन, और हमने उसमें 10 का इजाफा करने के बाद उसको तमाम पे पहुंचाया, फसारा मीकात मूसा अरबईन। तो जनाब मूसा की जो मीकात जब वो गए कोहे तूर पे, वो 40 दिन अल्लाह ने करार दिए। तो अब ये जो हदीस मैंने दिखा कि उसको भी तर्जमा सुन लीजिए कि उसमें भी ज़ाहिरन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुख्तलिफ अंदाज से उसको उलमा ने लिखा, मुख्तलिफ अल्फाज में लिखा है और बहुत सी किताबों में है कि मन अखलस लिल्लाह 40 सबाह, जो भी खुलूस नीयत के साथ, इखलास के साथ 40 दिन मुसलसल अमल करता है, तो यफ्तहुल्लाहु अबवाबल हिकमत मिन क़ल्बिही लिल्अज़हार, तो अल्लाह हिकमत और दानाई के दरवाज़ों को, दरीचों को उसके दिल से उसकी ज़बान पे जारी कर देता है। तो इंसान को ये जो अरबईन है, ये एक 40 दिन अपने आप को खुलूस के साथ इसी अमल को करना, 40 दिन ज़्यारत आशूरा पढ़ने, 40 दिन ज़्यारत वारसा पढ़ने, 40 दिन कोई ज़्यारत सैयद शहदा या कोई अमल करेंगे इखलास के साथ अल्लाह की खातिर, यानी क़ुर्बतन लिल्लाह, दिखावे के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, तो उसका ख़ास असर होगा, हमारी ज़िंदगियों पे असर है, हमारे हमारी रूहानियत पे उसका असर होता है। और किसी दुआ को भी, यहाँ तक मैंने बाज़ अहादीस सीखे कि बैतुल अहमर में मरहूम दरबंदी ने ये लिखा, कहा कि अगर कोई 40 दिन कोई दुआ मांगता है तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। और फिर फरमाते हैं हदीस में है कि 40 मोमिनीन को दुआ की कबूलियत के लिए दावत दो कि मिलके 40 मोमिनीन दुआ मांगे, और अगर 40 मोमिन दुआ मांगेंगे दुआ कबूल होगी, और अगर 40 मोमिन ना मिलें, जैसे मिसाल के तौर पे 10 मोमिन मिल जाते हैं, तो वो 4-4 दफ़ा उस दुआ को मांगें और दुआ का जिक्र करें, तो वो 40 दफ़ा अगर कहेंगे तो दुआ कबूल हो जाएगी। और यहाँ तक है मरहूम बंदे ने लिखा अपने कबीरतुल अहमर फी आदाब मिंबर में के अगर एक ही मोमिन है खुदी तो वो 40 दफा उस दुआ को मांगे, 40 दफा उस दुआ को दोहराए तो उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो 40 की बड़ी अहमियत है, और इंसान जब 40 का हो जाता है तो उसके लिए कुछ आदाब है कि भी इन मुसहबात पे अमल करे, जैसे असा लेना है, जैसे और बहुत से मुसहबात, जैसे अपना कफन का है, यानी एहतमाम करना कि इंसान। और फिर बहुत सी जगहों पर है कि रिवायात में है कि एक मरतबा मुनादी निदा देता कि आया इंसान, अब तू 40 बरस का हो गया है, अब गुनाह करे तो फिर तौबा करनी होगी, अल्लाह ऐसी दरगुजार नहीं करता बगैर तौबा के 40 के बाद। अब ये पुख्ता हो चुका है, ये उसमें अब वो अपने कमाल पे पहुंच चुका है, अब ये बच्चा नहीं रहा या नौजवानी जवानी के मरहलों से गुजर गया, पुख्तगी इसमें आ गई इसमें अभी। तो ये 40 जो है, चिल्ला चिल्ला चहल फारसी में कहा जाता है, जैसे चहलुम, तो चहल यानी चिल्ला काटना, वो चिल्ला यानी 40 दिन जो है किसी अमल को अंजाम देना। तो अरबाइन हुसैन की बहुत ज्यादा अहमियत है चंद वजूहात से। एक कि सबसे पहले जो अहले बैत अलैहिस्सलाम या सबसे पहले जो जायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, वो भी चेहलों पे मौला के करबला पहुंचे, और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम और मासूमीन और अहले बैत बीबियां शाम की कैद से रिहा होकर जब ज्यारत के लिए करबला आए हैं तो वो भी चेहलों के दिन पहुंचे थे। तो चेहलों की ज्यारत की बड़ी अहमियत है अहादीस में उसका बहुत ज्यादा, यानी जो मखसूसियां हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, उसमें तमाम मखसूसियों में सबसे ज्यादा जो सवाब जिक्र किया गया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्यारत का, वो चेहलुम की जियारत का सवाब सबसे ज्यादा जिक्र किया गया। जैसे रिवायत है उम्मुल मोमिनीन से कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किया, या रसूल्ला आप हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं, बहुत ज्यादा चूमते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं छोटे से बच्चे को, तो क्यों इतना ज्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं? तो आपने फरमाया कि मेरा ये लाल, मेरा ये नवासा मैदान करबला में मारा जाएगा जुल्म जोर से, भूखा प्यासा जिम्मा कर दिया जाएगा, और जो भी इसकी जियारत करेगा उसे मेरे एक हज का सवाब मिलेगा। तो उम्मुल मोमिनीन कहने लगी, या रसूल्ला आपके हज का सवाब मिलेगा? कहा नहीं, मेरे 2 हज का सवाब मिलेगा। कहा आपके 2 हज का सवाब मिलेगा? कहा नहीं, मेरे 3 हज का। करते करते रसूल खान का, मेरे 10 हज का, मेरे 20 हज का, मेरे 30। और रसूल खुदा वो उस रिवायत में है, वो उम्मुल फरमाती हैं कि 90 हज, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे 90 हज का सवाब मिलेगा। ये रिवायत मैं भी चंद दिन पहले दोबारा देख रहा था सारी ये रिवायत, तो फरमाया मेरे 90 हज का सवाब मिलेगा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अब ये आम ज्यारत है, यानी ये मखसूसी नहीं है, ये आशूरा या अरबईन या अरफात या नीमा शाबान या किसी मखसूस, जैसे इमाम हुसैन की मखसूसियां भी सबसे ज्यादा है। तो कहा ये आम जो ज्यारत करने जाएगा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे 90 हज का सवाब, और अगर कोई मखसूसी करे जैसे नीमा शाबान पे या योम अरफा, योम अरफा पे इतना ज्यादा सवाब जिक्र किया गया है कि यानी यहां तक है बाज़ रवायात में कि अगर मोमिनीन को पता चल जाए कि कितना सवाब है योम अरफा का, तो लोग मुसहब हज छोड़ के इमाम हुसैन की ज्यारत के लिए चले जाएं इसलिए। और फिर भी शेख अब्बास कौमी जो इस पिछले 100 साल के सबसे बड़े मुहद्दिस माने जाते हैं, उन्हें खातमुल मुहद्दिसीन कहा जाता है, बड़े बड़े फुकहा उनके शागिर्दों में, और नजफ अशरफ में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के हरम में अपने उस्ताद हाजी नूरी के साथ, साहिब मुस्तदरकुल वसाइल के साथ उनकी वहीं पे उसी रबाब में कब्र। तो उन्होंने फातिमे और दूसरी किताबों में, और बड़े बड़े उलमा ने, साहिब ये खसाइस हुसैनिया शेख जाफर शुस्तरी, इन्होंने उलमा ने ये रिवायात दर्ज की हैं कि मुस्तनद रिवायात है इमाम सादिक अलैहि सलाम से कि जो योम अरफा 9 जिलहिज को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्यारत करे, उसे रिवायात में है कि उसे 500 हज, 500 उमरा और 500 जिहाद मा रसूलिल्लाह का सवाब मिलेगा। 500 हज, 500 उमरे, 500, तो ऐसे ही इमाम हुसैन के। लेकिन सबसे ज्यादा जो जिक्र किया गया सवाब आशूरा मखसूसी है, नीमा शाबान, इन पे अगर आप देखें कितना कितना सवाब दर्ज है। लेकिन अरबईने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो इमाम हुसैन की अरबईन पे ज्यारत करे उसे 1,000 हज, 1,000 उम्रा और 1,000 जिहाद मा रसूलिल्लाह का सवाब मिलेगा। यानी आप अंदाजा लगाएं कि इंसान अगर एक साल में सिर्फ एक हज हो सकता है, उम्रे ज्यादा कर सकते हैं आप, एक साल में 500 उम्रे भी कर लेगा आदमी। वैसे तो है हमारे यहां कि अपना एक ही करें महीने में, 30 दिन में एक। अब अगर कोई हज कर रहा है तो साल में एक, 1,000 हज के लिए या 500 हज के लिए, 500 साल जिंदा रहे तो 500 साल में 500 हज करेगा, फिर उसकी जिंदगी में सेहत हो, फिर उसके पास पैसे हो, क्योंकि हज वलिल्लाह अला नास से हज्जुल बैते लिमन इस्तताआ इलैहि सबीला, जिसके पास इस्तताअत हो यानी इतने पैसे हों। हज पे आज बहुत ज्यादा खर्च आते हैं, तो अगर कोई आदमी हर साल ही हज करने लगी और 5-10 साल 10 साल मुसलसल हज करे तो पैसे अच्छे खासे उसके, 5,000 पाउंड के हिसाब से भी लगा लें तो आइंदा 50,000 पाउंड खर्चा 10 साल हज का। अमीर तो लोग कर सकते हैं, एक आम आदमी गरीब आदमी जो है वो 2-4 साल हज करने के बाद 5 साल मुसलसल, वो खुद बहुत उसके पैसों का मसला होगा। इतने हज का सवाब, इतने ज्यारात का सवाब, इतना जो जनाबे सैयद शहदा के लिए कि उनकी क्यों, और हत्ता यहां तक नहीं है बल्कि इतने हज, इतने उम्रे, इतने जिहाद, जिहाद वो भी मा रसूलिल्लाह। और आशिया ज्यादातर फुकहा का तकरीबन आम तौर से फतवा यही है कि हमारे यहाँ कोई जंग आज जो मौजूदा है वो जिहादे, यानी जिसे देखा जाए तो उस तरह से जिहाद नहीं है कि जो जैसे मासूम के साथ, क्योंकि वो कतई होता है दिफा। हाँ वो तो है दिफा, यानी जब आप पे हमला कर दिया गया, हमला कर दिया गया तो उस पर दिफा वाजिब है। लेकिन वो जो जिहाद मा रसूलिल्लाह का सवाब, बद्र उहद का, हुनैन का, खैबर मिसाल के तौर पे, या खंदक का, ये रसूल खुदा के साथ जिहाद का, ये क्यों इतना ज्यादा सवाब जिक्र किया? बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि कहा जिसने इमाम हुसैन की ज्यारत की ऐसा है जैसे उसने इतना मिसाल के तौर पर सदका निकाला हो, इतनी खैरात की हो। इमाम हुसैन के साथ जिसने, इमाम हुसैन की अलैहिस्सलाम की जिसने ज्यारत की हो उसको सिला रहमी का मिसाल के तौर पर सवाब मिलेगा। अपने जो इमाम हुसैन के साथ ज्यारत करे उसे इतने नमाजों का सवाब मिलेगा, इतने रोज, यानी तमाम इबादात का, हत्ता दूसरे बहुत से जो हैं वो अपने सिला रहमी और सदका खैरा, इन सब का सवाब मिलेगा जो इमाम हुसैन की ज्यारत करे। क्यों? ये तमाम की तमाम इबादात का इमाम हुसैन की ज्यारत से क्यों? क्योंकि ये तमाम इबादात अगर आज हैं तो सैयद शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से बाकी, उनकी उन कुर्बानियों का सदका है कि आज ये तमाम इबादात हैं, तो इमाम हुसैन की ज्यारत में तमाम इबादात का सवाब है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन इबादात को छोड़ दें, इमाम हुसैन की सिर्फ ज्यारत कर लें। अपने वालदैन के साथ सिला रहमी या अपने वालदैन की जो है वो खिदमत, रिश्तेदारों को छोड़ छाड़ के ज्यारत पे चल, नहीं ऐसा नहीं है भाई। वो भी वो वाजिब है, यानी ज्यारत सैयद शहदा में आपको हर नेकी का सवाब मिल रहा है क्योंकि उनकी अजमत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह ने हर सवाब को वहां रखा है। यहां तक रिवायात हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्यारत करेगा तो उसके लिए है कि अजर सवाब इतना ज्यादा कि जैसे अगर उसको कोई शय अजियत करे। तो मैं ये पहली वाली रिवायत मुकम्मल कर दूंगा, जो ज्यारत पे जाएगा तो उसको फिर से कहते हैं फिर। अब नए सिरे से शुरू कर अपने आमाल को, अब तक के तेरे गुना माफ हो चुके हैं जो तू इमाम हुसैन की ज्यारत के लिए। आज मैं एक रिवायत पढ़ रहा था जिसमें अल्फाज हैं मासूम अलैहिस्सलाम के रोज़ कयामत कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इमाम हुसैन की ज्यारत ना की हो और वो हसरत ना भरे, हसरत ना करे कि ए काश मैंने हुसैन इब्न अली की ज्यारत कर ली होती। जिसने ज्यारत नहीं की होगी वो हसरत करेगा, ए काश मैंने ज्यारत कर ली होती, क्योंकि रोज़ कयामत जो अजर सवाब जायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होगा वो किसी का नहीं होगा। शफाअत सबसे पहले उन्हें मिलेगी जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्यारत की होगी। ये इतना ज्यादा एहतमाम, इतना ज्यादा अजर सवाब, इतने ज्यादा नेकियों का सवाब, ये क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ऐसी है। और उसके लिए क्यों इतना सवाब है? बहुत ज्यादा उलमा ने बहुत तौजीहात लिखी है। फैज़ काशानी मरहूम की ये ज़ाहरन तौजीह है जो मैं पेश कर रहा हूं कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम इमाम बहुत ज्यादा हज पे जाते थे, तो आपके लिए है कि जैसे आप यानी 22 या 29 आपने हज पाप अदा की, 22 या 29 ऐसे मुझे। तो अब किसी ने कहा मौला हज में थे और हज का तवाफ कर रहे थे, हज में तवाफ कर रहे थे और अचानक एक आदमी आया मस्जिद हराम के अंदर खाना काबा के सामने और ऊंची ऊंची कहने लगा कि कोई है जो राह खुदा में मुझे खाना खिला दे, मैं भूखा हूं, कोई है जो राह खुदा में मुझे नया लिबास ले दे, मैं बेलिबास हूं, कोई है जो मुझे राह खुदा में नालैन ले दे, जूते ले दे, मैं नंगे पाँव हूं। तो एक मरतबा इमाम हसन मुश्तबा ने इंतजार नहीं किया कि कोई जा रहा है या नहीं जा रहा, फौरन आपने कहा चलो मैं चलता हूं, तवाफ को छोड़ के कहा कि मेरे साथ चलो। इमाम उसको गए, फौरन जाके उसको खाना खिलाया, उसे लिबास लेके दिया, उसे नालैन लेके दिए, फिर वापस आए। और फिर जैसे ही तवाफ करने लगे तो सारे जो वहां हाजी थे जो तवाफ कर रहे थे, जो तवाफ कर चुके वो सब के सब आए। का फर्जंदे रसूल, आप रसूल खुदा के नवासे हैं, रसूल खुदा के नवासे होते हुए आप हज का तवाफ छोड़ के चले गए उस भूखे नंगे के लिए। मैं गरीब आदमी, उसका पता ही कुछ नहीं कि कौन है, कि मोमिन है नहीं है, ये मोमिन है भी तो क्या, किस किस्म का आदमी गुनहगार है, और आप अल्लाह के घर का तवाफ छोड़ के उसके लिए चले गए। तो आप मुस्कुराए और आपने फरमाया तुमने मेरे जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस नहीं सुनी कि जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया उसको 3 हज का सवाब मिला। तुमने मेरे जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस नहीं सुनी कि जिसने किसी बेलिबास को लिबास पहनाया उसे 3 हज का सवाब मिलेगा। तुमने ये हदीस नहीं सुनी मेरे जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिसने किसी नंगे पैर चलने वाले को जूते लेके दिए उसको 3 हज का सवाब मिलेगा। कहा मैं हज के 13 अरकान है, मिसाल के तौर पे कि एहराम है, वकूफ अरफात है, वकूफ मशअर है, मुजदलिफा यानी मिना है, और फिर उसके बाद रमी जमरात है, मबीत है, तवाफ है, 2 रकत नमाज तवाफ है, साई है, तवाफ निसा है, मिना में रात गुजारना है, कंकरियां मारना शयातीन को, और तवाफ निसा की 2 रकत नमाज। तो कहा ये सारे वाजिबात मिलके एक हज बनते हैं। कहा मैं एक तवाफ छोड़ के गया था, तवाफ वापस आके कर रहा हूं, मैं तवाफ छोड़ के गया था और 9 हज का सवाब लेके आया हूं। अल्लाह अकबर, आपको अंदाजा हुआ भाई। उसने रसूल खुदा के साथ नेकी की है जिसने इमाम हुसैन की ज्यारत की, क्यों यानी रसूल खुदा के साथ, रसूल खुदा के साथ कोई नेकी कैसे कर सकता है, कर सकते हैं भाई। ये रसूल खुदा अपने घर की दीवार चुन रहे हैं, एक सहाबी जवान सहाबी आएगा, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी इस ये दीवार चुनने में मदद कर दूं। कहा बिस्मिल्लाह, वो फौरन वो भी ईंटे रखने लगा और वो दीवार बनाने लगा। उसके बाद जैसे ही मुकम्मल हो गई दीवार तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि कुछ मांगो मुझसे मैं तुम्हें अता करूंगा। कहा या रसूल अल्लाह मेरे लिए शहादत की दुआ कर दीजिए। तो आपने हाथों को बुलंद देखा, परवरदिगारा इस जवान ने मुझसे शहादत के लिए कहा कि दुआ कर दो, तो इसे शहादत इनायत फरमा। तो अजीजाने गिरामी, ये उसने नेकी की थी ना रसूल खुदा के साथ, तभी तो आपने उसको दुआ दी। किसी को नेकी से, किसी को नेक काम करने से रोकना नहीं चाहिए, रुकावट नहीं बनना चाहिए। तो अहदीस में है कि ऐसा है जैसे किसी ने इमाम हुसैन के साथ किया, ऐसा है जैसे उसने रसूल खुदा और दफ्तर रसालत के साथ नेकी किया, उनके काम आया, उनका काम कर दिया, उनके लिए जाके सौदा सलफ ले आया, कुछ किया, जैसे ऐसा है जैसे जनाब सलमान फारसी आते थे और जनाब सैयदा के घर में चक्की पीसते थे, चक्की चलाते आटा पीसते। तो कहा कि बिल्कुल ऐसा है जैसे जनाब सैयदा के लिए किसी ने नेकी की है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्यारत की, इतना अजर व सवाब। और सबसे ज्यादा उसमें ज्यारत अरबईन के लिए सवाब जिक्र किया गया, और यहां तक कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की रिवायत में, और ये मुस्तनद हदीस उलमा कहते हैं उसमें तो यहां तक अल्फाज हैं कि अलामा अलामतुल मोमिन खमसुन, अलामतुल मोमिन खमसुन, मोमिन की 5 अलामात। अल जहर बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम, ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ना, शायद तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए मेरे से, इमाम के अल्फाज में, यानी तरतीब से मुराद इन्हें कि पांचों वही चीजें जो इमाम ने पेश की हैं, लेकिन इमाम ने पहले किसका जिक्र किया शायद मैं उसको आगे पीछे ना कर दूं। अस्सलातु 51, 51 रकत नमाज पढ़ना, 17 रकत जो वाजिब है दिन की, 2 रकत फजर की, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 ईशा, ये 17 रकत बनती है। और 34 रकत मुस्तहब है, 2 नाफिला फजर है, आठ रकत नाफिलाए जोहर हैं, आठ रकत नाफिलाए असर हैं, चार रकत नाफिला मगरिब, दो रकत बैठ के पढ़ते हैं ईशा के, वो एक रकत शुमार होते हैं, और 11 रकत तहज्जुद की, कि 8 रकत शिफा, 2 रकत वित्र और 1 रकत, 2 रकत शिफा और 1 रकत वित्र। तो अब ये 34 रकत मुस्तहब, 17 वाजिब, तो ये मोमिन के अलामात में से है कि वो ये 51 रकत 51 बन जाती है, असला तो एहतवा 50, 51 रकत नमाज पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज से पढ़ेगा, ताफीर बिल जबीन, ताफीर बिल जबीन, सजदा जब करेगा तो वो खाक पे मट्टी पे सजदा करेगा, या खासतौर से बहुत से लोगों का खाक शिफा, बहरहाल यहां पे है कि मट्टी पे सजदा करेगा। और 3 अलामत हो गई, और चौथी अलामत मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़ियारतुल अरबईन मोमिन के अलामत में से है, कि अलामत मोमिन है ज़ियारत अरबईन करेगा। उलमा कहते हैं कि करबला, बहुत से तो कहते हैं करबला जाके ज़ियारत करना अलामत मोमिन है, बहुत से कहते हैं नहीं अगर ना भी जा सके तो, उनकी रिवायत में है, मैंने खुद देखा कि अगर जा आशूरा पे जाओ करबला का ज़ियारत पढ़ो, नहीं जा सकते हो तो जहां पे भी हो रोजे आशूर इमाम हुसैन की ज्यारत पढ़ो, अरबईन पे नहीं जा सकते तो जहां हो वहां से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्यारत पढ़ो। ये कितनी अहमियत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्यारत की, कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इतनी ज्यादा ताकीद की है। यहां तक रिवायात में है कि हज आप कर्जा लेके नहीं कर सकते, उधार लेके हज नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान में लिमन इस्तताआ इलैहि सबीला, जिसके पास इस्तताअत हो, हज वाजिब है लेकिन उस पे जिसके पास इस्तताअत हो, यानी इस्तताअत माली जिस्मानी हो, जिस्मानी तौर पे भी हो, यानी बीमार है नहीं जा सकता, या हालात खराब हैं, शहर रास्ते में मारा जाएगा, या वापस आके फकीर हो जाएगा, या पैसे हैं, तब उस पे हज वाजिब है, लेकिन वैल्ला वाजिब नहीं है। लेकिन ज्यारत मोहम्मद के लिए, बेशक कर्जा लेके उधार लेके भी आप ज्यारत कर सकते हैं, इतनी ताकीद, इतना सवाब है। तो ये इतनी अहमियत और इतनी ज्यादा ताकीद, मैं वो हदीस मुकम्मल कर दूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, इमाम वाला इमाम हसन अस्कली अलैहिस्सलाम की हदीस में, कि मोमिन की 5 अलामत अत-तख़त्तुम बिल यमीन, उसमें से 5वीं अलामत है कि दाएं हाथ में अंगूठी पहनना मोमिन की अलामत, क्योंकि वो बाएं हाथ में मुनाफिकीन या मौला के दुश्मन पहनते थे। अब आया लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं, वो कहते हैं हाँ अगर राइट हैंड में अंगूठियां हों, तो दो छोटी उंगलियों में अंगूठी पहननी चाहिए, अंगूठे में या दो इन उंगलियों में नहीं पहननी चाहिए। तो अगर दाएं हाथ में अंगूठियां हों तो बाएं हाथ में पहन सकते हैं, लेकिन अगर दाएं हाथ में अंगूठी नहीं है तो बाएं हाथ में अंगूठी पहनना मुनाफिक की अलामत है, लेफ्ट हैंड में अगर दाएं हाथ में ना हो, सिर्फ लेफ्ट हैंड में पहने। तो अब बहरहाल मैं अरबईन है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता था, मुख्तसर रखना चाहता था ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत। तो अरबईन पे जब जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी पहुंचे, नाबीना हो चुके थे उनकी, जाहिर आंखों में मोतिया उतर आया था, उस जमाने में आंखों में मोतिया उतर आता था, तो अभी ऑपरेशन तो थे नहीं, तो वो फिर लोग देख नहीं पाते थे, बिनाई कमजोर हुई, करते करते बिनाई कमजोर होते हुए बिनाई चले गए, या मोती उतर आया, तो फिर वो देख नहीं पाते थे। तो जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, उनके वालिद भी शहीद हैं, बहुत बड़े शहीद के बेटे, और उनकी नस्ल हमेशा मोमिन रही, शेख मुर्तजा अंसारी हमारे जो बहुत बड़े फकीह गुजरे 150 साल पहले नजफ़ अशरफ के खुजिस्तान के थे, ये भी हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी की नस्ल से थे। और हजरत जाबिर जो हैं वो हदीस किसा के रावी, जनाब सैयदा से बगैर वास्ते के उन्होंने हदीस नकल की है, कि बीबी के दर पे गए कि बीबी मुझे कोई हदीस सुनाए, तो आपने हदीस के साथ, तो ये अवालिमुल उलूम में ज़ाहिरन जो है मरहूम बहरानी ने इसको दर्ज किया कि बीबी से डायरेक्ट उन्होंने हदीस को सुना, बीबी ने कहा सुनो मैं बाप को बताती हूँ, तो दरवाजे पर बैठे बीबी के घर के, और बीबी ने उनको हदीस किसा सुनाया। वो पहले ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इसीलिए अल्लाह ने उनकी नस्ल में इतने इतने बड़े उलमा फुकहा मोमिनीन मुकद्दस उलमा बड़े 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 मोमिनीन उनकी नस्ल में रखे। तो पहले जब वो गए इमाम हुसैन की, जब पता चला शहादत हो गई, तो वो गए अपने गुलाम के साथ कि वो रास्ता दिखाए बताए, बूढ़े हो चुके थे, ज़ईफ़ उम्र थे। जब पहुंचे करबला तो फुरात में से वजू किया, गुसल किया, ज़ाहरन, और गए रोने लगे ऊंची आवाज से, कहा कुबूर के निशान नहीं जानते थे, किसकी कौन सी कब्र, अभी कब्रों पर निशान नहीं थे, नाम भी नहीं थे उस तरह से। तो रोने लगे, कहा कि ए हुसैन, जब मैं पहले आया करता था आप मुझे प्यार से गले लगाते कि आप मेरे नाना के सहाबी। ए हुसैन, मैं बहुत दूर से आपकी ज्यारत के लिए आया। रोने लगे। तो ज्यारत पे जब आए तो एक मर्तबा जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्लाह सारे महसूस करने लगे कि कानों में आवाज आ रही है कि काफिला आ रहा है। कोई काफिला आ रहा है, दूर से आवाजें आ रही हैं ऊँटों के चलने की, काफिले के आने की, रोने की। तो जनाबे जाबिर ने फौरन अपने गुलाम से कहा, कहा कि देख कौन आ रहा है। कहा कि वो काफिला है, दूर से जो आवाजें आ रही हैं वो काफिला आ रहा तो जनाबे जाबिर ने एक मर्तबा अपने गुलाम से कहा कि अगर ये इस काफिले में मेरे मौला सज्जाद हुए ना तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मेरी तरह से तुम आजाद। हर गुलाम को आजादी बड़ी पसंद होती है। तो एक मर्तबा देखने लगे, कहा क्या अलामात हैं आपके मौला की, आपके मौला सज्जाद की कोई अलामात तो होंगी। कहा हाँ, मेरा मौला बड़ा कदावर है, बहुत खूबसूरत, मेरे मौला बहुत जवान है, 23-24 बरस के जवान है, बहुत खूबसूरत है। तो दूर से देखने लगा का तो दूर से देखने लगा का काफिले के सामने एक मर्द तो चल रहा है, कदावर भी है लेकिन ये जवान नहीं है, इनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, इनकी दाढ़ी सफेद है, ये आपके मौला सज्जाद नहीं, अलामात पूरी नहीं है। आप जानते हैं ना, अगर किसी घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, बाप अगर दुनिया से चला जाए तो बेटा चाहता है लोग मुझे गले लगा के पुरसा दें, मुझे गले लगाएं, मुझे प्यार करें, और मुझे पुरसा दे के आप यतीम हो, आपके बाबा मारे गए। तो अब मौला सज्जाद अलैहि सलाम को किसी ने करबला के वाक़े के बाद ना गले लगाया था ना पुरसा दिया था, तो मौला सज्जाद तरसे हुए थे कि कोई मुझे गले लगाए, कोई पुरसा दे। तो जैसे कई बहुत दिनों से कोई आदमी किसी अपने को तलाश कर रहा होता है, मौला सज्जाद ने दूर से जनाबे जाबिर को देखा, खुद ही आगे बढ़े, खुद ही जनाबे जाबिर को जोर से गले लगाया और ऊंची ऊंची रोने लगे। कहा जाबिर, हा होना कोतेला रे जालो ना, जाबिर इसी जमीन पे हमारे मर्दों को जिबा किया, जाबिर यहां पे हमारे मर्दों को यहां पे कत्ल किया गया, यहां शहीद किया गया, जाबिर हा होना कोतेला रे जालो ना, जाबिर मेरी फुफ्फियों को कैदी बनाया गया, जाबिर मेरे गले में तौक डाला गया, जाबेर मैं आपको बताऊं, मेरे मौला सज्जाद ने अपने भाइयों के मसाइब को पढ़ा, अपने चचा के, अपने बाबा के, अपने तमाम बाबा के अनसार सबके मसाइब सुनाने लगे। जनाबे जाबेर ऊंची ऊंची रोने लगे। एक मरतबा जनाबे सैयद सज्जाद ने रो के कहा, कहा जाबेर जरा कुछ दूर चले जाइए, मेरी फुफियां मेरे बाबा की जियारत के लिए आई हैं। तो जनाबे जाबेर ने रो के कहा, कहा मौला मैं तो नाबीना हूं, मौला मैं कुछ देख नहीं सकता, तो मौला मुझे आप दूर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, मैं देख तो सकता नहीं हूं, पर्दे का मुझे पता है तमाम। तो मौला सज्जाद अलैहि सलाम ने फरमाया, जाबिर आप देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, मेरी फुफ्फियां भी बैन करेंगी। मौला को पता था मेरी फुफ्फियां बैन करेंगी, ऊंची आवाजों से रो रो के कहेंगी हाय अली अकबर मारा गया, हाय हुसैन, हाय अब्बास। जाबिर मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि ना महरमों के कानों में मेरी फुफियों के बहनों की आवाज आए। जाबिर थोड़ा दूर चले जाइए। बस एक मरतबा जनाबे जैनब कुबरा बुलंद आवाज से रोती हुई आगे बढ़ी, कहा सैयद सज्जाद, बेटा सज्जाद मुझे मेरे भाई की कब्र का निशान बता दीजिए। मौला सज्जाद लेके बीबियों को आगे बढ़े, इशारा किया कि फूफी अम्मा यहां मेरे बाबा की, इशारा किया कब्र की तरफ, कब्र मुतहर की तरफ, यहां मेरे बाबा की, यहां मेरे बाबा की कब्र है। जनाबे जैनब कब्र मुतहर पे गिर गई, रोने लगी ऊंची आवाज से, भैया जब मैं पहले आपसे मिलने आया करती थी आप खड़े होकर इस्तकबाल किया करते थे, भैया मुझे गले लगा लो, भैया हम शाम से लुट के आए हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं रहा, सारे बच्चे हमारे बस भाई। अभी अजीब अंदाज से बीबी ने मसायब पढ़ना शुरू किए, मेरा दिल कहता है कि जनाब सकीना के पूरे मसायब पढ़े होंगे, फिर रोने लगी सारी बीबियां मौला के कब्र मुतहर के ऊपर गिर गई, बड़ी बुलंद आवाज से रोने लगी। जब सब रो रही थी मौला सजाद भी रो रहे थे, तो एक मरतबा मौला ने खुद ही अपनी फुफी का बाजू पकड़ा और कहा, फुफी अम्मा बस कीजिए, बस कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बीबी रोते रोते मर जाए। बाजू थामा, अपनी फुफी को रोका। तो जनाब जैनब कुबरा ने एक मरतबा जब कब्र मुतहर से उठी तो सवाल किया, कहा बेटा सज्जाद, मेरे मेरे भाई के साथ वाली जो कब्र है ये पाइंती में, ये कब्र किसकी है? तो मौला सज्जाद ने फरमाया कहा, फूफी अम्मा ये मेरे भैया अली अकबर की कब्र है। सारी बीबियां दोबारा कब्र मुतहर पे गिर गईं, वाह अली अकबर। तो मौला सज्जाद कब्रों के नाम बताते रहे, निशान बताते रहे, यहां कासिम है, गंजे शहदा मिलेगा। फिर अब एक मरतबा जनाब जैनब कुबरा ने सवाल किया कि बेटा सज्जाद, आपने सब कब्रों के निशान बता दिए लेकिन आपने मेरे भैया अब्बास की कब्र का निशान नहीं बताया। मेरे भाई की कब्र का, अब्बास की कब्र का निशान नहीं बताया। मौला सज्जाद के आंसू फिर बह रहे। अब वो भी अम्मा मेरे साथ चले, मेरे चचा की कब्र फुरात के किनारे है, मैं आपको ले चलता हूं। बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं कि एक मरतबा जनाब जैनब ने बीबियों का रास्ता रोक लिया और रास्ता रोक के कहा, बीबियों सब कुछ बता देना मेरे भैया अब्बास को, बता देना हमें कूफा और शाम के बाजारों में ले गए थे, बता देना हमें शराबी के दरबार में ले गए थे, बता देना हमें ताजियाने मारे गए थे, लेकिन बीबियों मत बताना मेरे भैया अब्बास को, मत बताना सकीना शाम में रह गई है। अजरक उमर अल्लाह बस भाई, बीबियां आई बहन करने लगी, बहुत ज्यादा गिरिया किया। जब 3 दिन गुजर गए करबला में, मौला सज्जाद ने कहा, फुप्पी अम्मा बस अब सब बीबियों से बता दें कि कल सुबह हम मदीने वापस चले जाएंगे, अब हम मदीने में, अब हम करबला में नहीं रहेंगे, हम सुबह मदीने वापस चले जाएंगे। तो बीबी ने सब बीबियों से कहा, सुबह तैयार रहना। सैयद सज्जाद ने कहा, मदीने चले जाएंगे। जैसी सुबह नमोदार हुई, मौला सज्जाद ने देखा कि जनाब रबाब तैयार नहीं। खुद ही मौला सज्जाद एक मरतबा अपनी माँ के पास आया, कहा, मादरे गिरामी क्या बात है, आप तैयार नहीं? तो जनाब रबाब ने फरमाया कि सैयद सज्जाद, मैं करबला से मदीने जाके क्या करूंगी, मेरे मौला करबला में, मेरा अली असगर करबला में, मेरी सकीना शाम में। तो मौला सज्जाद फरमाने लगे, मादरे गिरामी आप करबला में क्या कीजिएगा? कहा, सज्जाद मैं कब्रों पे पानी डाला करूंगी, मैं कब्रों की सफाई किया करूंगी, अगर जायरीन आएंगे मैं बताऊंगी अली असगर को तीर कहां लगा था, मैं कब्रों के निशान बताऊंगी। मौला सज्जाद रोने लगे, नहीं मादरे गिरामी, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मैं आपको यहां तनहा छोड़ दूं, अभी ना हरम बना था ना अभी रोजे तामीर हुए थे। मौला ने फरमाया कि नहीं मादरे गिरामी, मैं आपको यहां छोड़ के नहीं जा सकता। परवरदिगारा وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ। परवरदिगार तुझे वास्ता है शहदाए करबला का, तुझे वास्ता असीराने करबला का, तुझे वास्ता जनाब ज़ैनब कुबरा की अजमतों का, जितने मोमिनों मोमिनात बे औलाद सबको औलाद इनायत फरमा। परवरदिगार आज के दिन हम सिर्फ इतनी दुआ मांगेंगे, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, जो हमारे मोमिनीन मरीज है सबको शिफाए कामला अजल इनायत फरमा, जो कोरोना वायरस है इसका खात्मा फरमा, हमारे मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, तमाम जायरीन की, अजादारों की, मातमियों की हिफाजत फरमा, इस्लाम के इमाम बारगाहों की तरक्की इनायत फरमा, खिदमत गुजारान की तौफीकात में इजाफा फरमा, हम सब की आकबत बखैर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने सिद्ध जलाल का, जो हमारे बरादरान कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी हम इत्तेहाद के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम करेंगे, परवरदिगारा मुसलमानों की मोमिनीन की सफ़ों में इत्तेहाद व वहादत को इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारे तमाम मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, दुश्मनान अहले बैत खुसूसन दाइश तालिबान और आले सऊद को गारत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम बिहक मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन।
हाथों पे जिंदा से उठाया। سجاد نے ہاتھوں پہ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه واله السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصحاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلمون وامري لامركم متبع صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى اجسادكم وعلى اجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بكى علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك اسال الله وبالشان الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه ان يصلي على محمد وآل محمد وان يجعلني معكم في الدنيا والاخره السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخذلها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل سام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خازن متذلل خاشم أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا كانعم وفي جميع الأحوال متواضيا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا جد لذنوب غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرحت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادئ من البلاء أكلت وكم من إسار وكيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وكسرت بي آمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومتالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودواء وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، إلهي وربي من لي غيرك، لمن لي غيرك، من لي غيرك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد 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 وآل محمد. إلهي بحق محمد وأنت المحمود، إلهي بحق علي وأنت الأعلى، إلهي بحق سيدا وأنت فاطر السماوات والأرض، إلهي بحق حسن وأنت المحسن، إلهي بحق حسين وأنت قديم الإحسان. إلهي نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة. إلهي أجل ظهور إمامي إلى حق بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بحق صفاتك وبعز جلالك وبنور أنبيائك وبأعظم أسمائك ودماء شهادتك وبمناجاة فقرائك. إلهي هم تيري بارگاه میں دامن پھیلائے ہوئے ہیں. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. الہی تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہم سے ان کو راضی و خوشنود فرما، علوم اہل بیت سے ہمارے قلوب معطر فرما، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں خصوصاً امام مشن لندن ایم سی ای اور سکینہ ٹرسٹ چلا رہے ہیں، یا جس طرح کی بھی معاونت کر رہے ہیں ان کے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، خصوصاً مولانا ظفر علی نقوی صاحب مرحوم کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، اعلی علی جیل میں مقام بلند فرما، پروردگار ان اداروں کو چلانے والوں کی جو شرعی حاجات ہیں پوری فرما، ان میں سے جو بے اولاد ہیں صاحبان اولاد عطا فرما، خدمت دین کی توفیق نصیب فرما، رزق کی تنگی دور فرما، پروردگار اس مقدس مقام اس مقدس سرزمین کا واسطہ، ان پاک ہستیوں کا واسطہ، ہمیں پتہ ہے تجھے ناسیوں سے کتنا پیار ہے، اس لیے ان کے واسطے سے اپنی حاجات کے طالب ہیں، ہماری دعائیں منظور فرما، جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں بس صدقہ صاحبان حرمین علیہ السلام قبول فرما، جو دعائیں بھول گئے رحمت فرما، ہمارے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائے فی حاضہ ساعت و فی کل سام ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزکا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.